ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नष्ट की। श्रीमद्भागवतम स्कंद 9 अध्याय 5 टेक्स्ट नंबर 21 और 22 कैंटो 9 चैप्टर 5 टेक्स्ट नंबर 21 एंड 22। श्री शुक उवाच एवं सकृत्या राजानं दुर्वासा परितोषिता ययो विहायसा आमन्त्र्य ब्रह्मलोकं अहेतुकम्। श्री शुक उवाच एवं संकृति राजानं एवं संकृति राजानं दुर्वासा पारितोषिता दुर्वासा पारितोषिता ययो विहाय सा आमंत्र्या ययो विहाय सा आमंत्र्या ब्रह्मलोकं अहेतुकम् ब्रह्मलोकं अहेतुकम्। पढ़िए।
राजानं माता जी श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा एवं इस प्रकार सकृत्य महिमा गान करके राजानम राजा को दुर्वासा महान योगी दुर्वासा मुनि पारितोषित सभी प्रकार से संतुष्ट होकर ययो वहां से चला गया विहायसा अंतरिक्ष मार्ग से आमंत्र्य अनुमति लेकर ब्रह्मलोकम इस ब्रह्मांड के सर्वोच्च लोक को अहेतुकम शुष्क चिंतन से विहीन। अनुवाद और तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा इस प्रकार सब तरह से संतुष्ट होकर महान योगी दुर्वासा ने अनुमति ली और वे राजा का निरंतर यशोगान करते हुए वहां से चले गए। वे आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए जो शुष्क ज्ञानियों से रहित है। अनुवाद हमारे साथ दोहराना। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा इस प्रकार सब तरह से संतुष्ट होकर महान योगी दुर्वासा ने अनुमति ली और वे राजा का निरंतर यशोगान करते हुए वहां से चले गए। वे आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए जो शुष्क ज्ञानियों से रहित है। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा यद्यपि दुर्वासा मुनि आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए किंतु उन्हें किसी विमान की आवश्यकता नहीं पड़ी क्योंकि महान योगी जन बिना किसी यंत्र के एक लोक से दूसरे लोक को यात्रा कर सकते हैं। सिद्ध लोक के निवासी किसी भी लोक की यात्रा कर सकते हैं क्योंकि उन्हें योग की सारी सिद्धियां सहज प्राप्त हैं। इस तरह महान योगी दुर्वासा मुनि आकाश मार्ग से किसी लोक को यहाँ तक कि ब्रह्मांड को भी जा सकते हैं। ब्रह्म लोक में हर व्यक्ति स्वरूप सिद्ध है और परम सत्य को प्राप्त करने के लिए उसे किसी दार्शनिक चिंतन की आवश्यकता नहीं पड़ती। ब्रह्मलोक जाने का उद्देश्य वहां के निवासियों को यह बताना था कि भक्त कितना शक्तिशाली होता है और इस भौतिक जगत के हर जीव से आगे निकल सकता है। तथा कथित ज्ञानी तथा योगी किसी भक्त की तुलना में ठहर नहीं सकते। हम अज्ञान तिमिरंदस ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददा। वंदेहं श्री गुरु श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुन वैष्णवाश्च श्रीरूपं सागर जातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपदान सगण ललिता श्रीशाखान्विताश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। सप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विषभानुसुते देवी वांछाकल्पतरु व्रज कृपा सिंधुरेव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामे। नमस्ते सरस्वतीदेवं गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाशा।
जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासति गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे।
तो 22 नंबर का अनुवाद और परपोट था, 21 नंबर का ही पढ़ देता हूँ। दुराशा मुनि अम्बरीश महाराज की स्तुति कर रहे हैं। स्वर्गलोक की सारी सौभाग्यशाली स्त्रियां प्रतिक्षण आपके निर्मल चरित्र का गान करेंगी और इस संसार के लोग भी आपकी महिमा का निरंतर कीर्तन करेंगे। इस प्रकार शब्दभाव से संतुष्ट होकर महान योगी दुर्वासा ने अनुमति ली और राजा का निरंतर शोगान करते हुए वहां से चले गए। वे आकाश मार्ग से ब्रह्मलोक गए जो सूक्ष्म ज्ञानियों से रहित है। प्रसंग है अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि का, भागवत के नौम स्कंद की कथा है। तो हमारे यहाँ तो रोज क्लास होता है, तो संडे को आप सब लोग, कई लोग संडे को ही आते हैं, तो मैं पूरा प्रसंग संक्षेप में कह के यहीं बात। महाराज मनु के पुत्र का नाम था नभग और उनसे हुए महाराज नाभाग। महाराज नाभाग ने अपनी पत्नी के साथ भगवान की आराधना की पुत्र प्राप्ति के लिए, और एक दिन महल में दोनों राजा रानी शयन कर रहे थे तो भगवान प्रसन्न होके शयन कक्ष के बाहर से कहा, हे अम्ब, राजा की पत्नी ने अंदर से कहा, तुम कौन हो? भगवान ने कहा, मैं ईश हूं। और आशीर्वाद दिया, मेरा ही अंशावतार तुम्हारे गर्भ से जन्म लेगा। इसलिए भगवान की कृपा मान के अम्ब और ईश शब्द मिलकर के पुत्र का नाम अम्बरीश रखा। नवदा भक्ति में अम्बरीश महाराज की कथा आती है। श्रवणम कीर्तनम विष्णु श्रमणम बाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्य आत्मनिवेदनम। नवदा भक्ति में एक एक भक्ति में एक एक चरित्र है। श्रवण में परीक्षित महाराज, कीर्तन में सुखदेव गोस्वामी, दासी भाव में हनुमान जी, साक्ष्य भाव में ग्वाल बाल सखा अर्जुन अन्य लोग, आत्मनिवेदन में बलि महाराज। लेकिन नौ प्रकार की संपूर्ण भक्ति में महाराज का नाम आता है, अम्बरीश महाराज। नौ प्रकार की भक्ति, एकादशी का व्रत रखा वृंदावन में, और दुर्वासा मुनि ने देवलोक में अम्बरीश महाराज की प्रशंसा सुनी है। जहां जाते हैं अम्बरीश महाराज का गुणगान सुनते हैं कि बहुत अच्छे भक्त हैं, नवदा भक्ति करते हैं। सोचा परीक्षा लो जाके, है कि नहीं। और ठीक एकादशी के पारायण के दिन पधार गए। पारायण का समय हो रहा था और कहा, मैं स्नान करके आता हूं। और स्नान किया, उधर ही ध्यान में लग गए। बहुत देर तक आए नहीं, पारायण का समय चला जा रहा था और महाराज अम्बरीश अंशमंजस में श्री राधा राज जी आई, भगवान गौनिताय, भगवान की सीता राम लक्ष्मण हनुमान की, श्री प्रभुपाद की जय। ब्राह्मण से विचार विमर्श किया, क्या करूं? अगर मैं पारायण कर लेता हूं तो दुराशा मुनि का अपमान होगा, अगर नहीं करता हूं मेरे एकादशी व्रत का फल चला जाता है। तो ब्राह्मणों ने कहा कि आप जल पी लीजिए। तो जल पीने से ऐसा नहीं कि कोई अन्न आपने खा लिया, जब महाराज आ जाएंगे दुर्वासा मुनि तो तब आप पारायण कर लेना उचित। और जैसे ही जल पिया, और ये योगी हैं वहां ध्यान में बैठे थे, वहीं से देख लिया कि राजा ने बिना हमको पूछे जल पी लिया। अक्रोधित हो गए बहुत, बाल उखाड़ा, कृत्या नाम की राक्षसी को पैदा किया, का भस्म कर दो इसको। लेकिन जो भगवान का भजन करता है उसकी रक्षा सुदर्शन चक्र करता है। भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन सिर्फ भक्तों की रक्षा के लिए रखा है, इसलिए भक्त लोगों का कोई सिक्योरिटी थोड़ी होता है। एक छोटा मोटा नेता भी भाषण देता है, दो चार पुलिस वाले आगे पीछे घूमते हैं, कहीं इसको कोई ठोक ना दे मार। लेकिन देखो, भक्त लोग धड़ल्ले से बोलते हैं ये पाप है, नरक में जाओगे, डरते हैं। सुदर्शन चक्र रहता है चारों तरफ। श्री प्रभुपाद जी बड़े बड़े वैज्ञानिकों को राजकल कहते हैं। कोई जड़ सेने का सिक्योरिटी है किसके बल पर? सुदर्शन चक्र के। तो जो भी भगवान का भजन करता है, प्रचार करता है, सुदर्शन चक्र का आवरण उसके ऊपर रहता है। और सुदर्शन चक्र ने वो कृत्या नाम की जो राक्षसी ने ज्वाला उत्पन्न की उसको भस्म कर दिया। और दुर्वासा मुनि की तरफ दौड़ा और ये विभिन्न लोकों में गए अपनी रक्षा के लिए, तो सबने मना कर दिया, भाई इधर मत आना। और अंत में भगवान विष्णु के पास गए और भगवान ये कह के टाल दिया कि मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भक्तों का हूं और भक्त मेरे हैं। जिन भक्तों ने मेरे लिए अपना सर्वस्व त्याग दिया है, जैसे वो मुझे बिक चुके हैं, मैं भी अपने भक्तों को बिक चुका हूं, इससे मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद कर नहीं सकता। अगर तुम्हारी कोई मदद कर सकता है तो अम्बरीश महाराज तुम्हारी मदद कर सकते। और दौड़े दौड़े अम्बरीश महाराज के पास आए और अम्बरीश महाराज ने सुदर्शन चक्र से प्रार्थना की कि सुदर्शन चक्र दुर्वासा मुनि को माफ कर दो। और बाद में दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज की स्तुति कर रहे। दुर्वासा मुनि साधारण योगी नहीं है, भगवान शंकर के रुद्रावतार हैं। और कई प्रसंगों में भगवान कृष्ण के गुरु रहे हैं। अत्रि मुनि की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने ही दुर्वासा का रूप धारण किया। सामर्थ्यवान हैं। एक बार घोषणा की, मैं दुर्वासा मुनि हूं, किसी की हिम्मत है जो मुझे अपने घर में रख ले? क्योंकि मेरा स्वभाव है, मैं छोटी सी बात पर जल्दी गुस्सा हो जाता हूं। तो कोई सहन कर सकता है मुझे? किसी की हिम्मत है अपने घर में रखेगा? तो तीनों लोगों में किसी की हिम्मत नहीं है कि इनको अपने घर में रखे। फिर गए द्वारिका, भगवान से कहा तुम्हारी हिम्मत है अपने घर में रखने की? भगवान ने कहा मेरे घर में रहो। अपने निज सदन में वास किया द्वारिका, फुटंग कर देते, रुद्रावतार हैं हमेशा तम तमाए। कभी हजार आदमी का खाना एक साथ खा जाएंगे और कभी छोटे बच्चे की तरह थोड़ा बहुत खा के रह जाए। कभी बिना पूछे बाहर चले जाते, कई दिन तक आते नहीं, खाना ऐसे ही पड़ा रहता। और कभी आधी रात में धमक जाते हैं, भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। और भगवान सामर्थ्यवान हैं, वही दुर्वासा मुनि को झेल सकते हैं। एक बार क्या किया, जिस सदन में रहते थे उसमें आग लगा दी और आधी रात में महल में धमक गए। भगवान कृष्ण से कहा खीर खाने की इच्छा है। भगवान ने रुक्मणी से कहा दुर्वासा मुनि के लिए खीर बना के लाओ। और रुक्मणी जी सोने के थाल में खीर परोस के लाई, थोड़ा सी खाई, कहा इसको अपने बदन में पोत लो। अब भगवान से कह रहे हैं अपने मुंह से लेके पूरा पोत लो साबुन की तरह मल लो और रुक्मणी के बदन में भी लगा देना। भगवान एक ही आज्ञा का पालन करते हैं। और बाद में कहा मैं थोड़ा रथ में सवार होना चाहता हूं और उसमें आप और रुक्मणी दोनों मेरी सवारी बनोगे, नहीं घोड़े बनोगे। और रथ में खुद बैठ गए, रुक्मणी और कृष्ण को घोड़ा बना दिया। चाबुक मारने लगे, जैसे सारथी अपने घोड़े को चाबुक मारता है ऐसे ही भगवान कृष्ण और रुक्मणी पर प्रहार करने लगे। रुक्मणी जी तो कुछ देर में बेसुध हो गई, धर्म से नीचे गिर गई। और जैसे रुक्मणी जी नीचे गिरी रथ से नीचे कूदे भागने लगे, भगवान भी पीछे से भागे। हे दुर्वासा मुनि रुक जाओ, प्रसन्न हो, गुस्सा क्यों होते हो? तुरंत खड़े हो गए। तब कहा तुमने सचमुच में क्रोध को जीत लिया है। भगवान तो बहुत प्रसन्न हुए और कहा तुमने पूरे बदन में खीर लगाई है, इससे मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि कहीं भी किसी अस्त्र शस्त्र का प्रभाव तुम्हारे बदन पर नहीं होगा। और रुक्मणी जी से कहा तुमने भी बदन पर खीर लगाई, तुम हमेशा जवान रहोगी, कभी भी रोग जरा तुमको व्याधि की नहीं। लेकिन भगवान से कहा आपने जब बदन में खीर लगाई तो पांव के तलवे में क्यों नहीं लगाई? पांव के तलवे में अगर लगा देते हैं, ये पांव के तलवे में जो तुमने खीर नहीं लगाई यही आपकी लीला का कारण बनेगा का। इसीलिए बहेली ने बाण मार दिया भगवान को, तलवा सॉफ्ट था ना। ऐसे दुर्वासा मुनि हैं। यहां पर प्रशंसा कर रहे हैं, यशोगान कर रहे हैं, लेकिन पुराणों में एक कथा आती है, मुंह से तो अम्बरीश महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या प्रशंसा कर रहे हैं? कि तुम सारी सौभाग्यशाली स्त्रियां तुम्हारे चरित्र का गुणगान करेंगी, ये संसार के लोग भी आपके महिमा का निरंतर कीर्तन करेंगे। लेकिन मन ही मन खुंदक है बहुत, क्योंकि जब सुदर्शन चक्र ने दुर्वासा मुनि का पीछा किया तो सुदर्शन चक्र से जो गर्मी निकली ज्वाला, उससे दुर्वासा मुनि की पीठ बहुत झुलस गई, जल गई थी पीठ, बहुत गर्मी, जलते थे पीछे की तरफ। तब उत्तराखंड गए, उत्तराखंड में ठंड बहुत पड़ती है और वहां तपस्या की भगवान की, उसी स्थिति में और भगवान ने दर्शन दिया और वर मांगने के लिए कहा। तो दुर्वासा मुनि ने भगवान से कहा अगर आप मुझे वर देना चाहते हैं, मैं आपसे एक ही वर चाहता हूं कि अम्बरीश महाराज नवदा भक्ति करते हैं और भक्त का कभी पुनर्जन्म नहीं होता, लेकिन मैं आपसे वर मांगता हूं कि अम्बरीश को 10,000 साल तक जन्म लेना पड़े। अब भगवान को ये बात अच्छी नहीं लगी कि मेरे भक्त के ही विरोध में वर मांग रहे हैं। लेकिन अब वरदान वचन दे चुके हैं वर मांगो, और अंदर ही अंदर भगवान नाखुश थे, प्रसन्न नहीं थे। तब दुर्वासा मुनि से कहा भक्त का 1,000 जन्म और मेरा 1 जन्म बराबर होता है, अम्बरीश जन्म ले न ले, लेकिन मैं 10 अवतार जरूर लूंगा इस अम्बरीश के लिए। इसे 10 अवतारों की जो कथा है वो अम्बरीश महाराज की वजह से भगवान ने 10 अवतार, क्योंकि 10,000 जन्म का मांगा था ना, तो 1,000 जन्म में मनुष्य का 1000 जन्म, भगवान का 1 जन्म, इसे 10 अवतार। ये प्रसंग पुराणों का है। दुराचा मुनि साधारण योगी नहीं है। शंकर जी क्या अवतार है? शंकर जी कौन है? भगवान का कीर्तन करते हैं, नाती हैं वो। न तथा मे प्रियतम आत्मयो निर्न शंकर न च शंकरषण न श्री नैवात्मा च यथा भवान। एक प्रसंग में कहते हैं भगवान, ब्रह्मा मेरा पुत्र है लेकिन शंकर मेरा नाती है घर, और हर कोई व्यक्ति लड़के के बजाय नाती को ज्यादा प्यार करता है। लड़के में इतनी ममता नहीं होती है, क्योंकि जब बच्चा पैदा होता है उस समय माँ बाप की उम्र 25-30 साल की होती है, तो उनकी नजर वैसे ही नीचे नहीं रहती। लेकिन जब 60 साल का आदमी हो जाता है तो उसका जो वात्सल्य भाव है वो भी पक जाता है। आपने देखा होगा घरों में, आपके खुद के भी बच्चे होंगे जो जवान हैं, थोड़ा भी बच्चा परेशान करेंगे थप्पड़ दे देते और तुरंत आके दादाजी पकड़ लेते हैं, क्यों मारा। उनका वात्सल्य भाव प्रगाढ़ है, पक्का हुआ है, और हमारा अभी कच्चा है। इसलिए भगवान का शंकर जी के प्रति नाती का भाव है, ब्रह्मा से भी ज्यादा प्यार करते हैं। उसी शंकर के अवतार दुर्वासा मुनि हैं। लेकिन जो आजकल के योगी हैं इनकी तुलना दुर्वासा मुनि से नहीं करनी चाहिए। शिरडी में हम जाते हैं, क्या नाम है उनका, शिरडी के साईं बाबा, क्या लिखा है, सच्चिदानंद घन, उसको पढ़ने में ही 10 मिनट लगते हैं, इतना लंबा नाम है। शिरडी में एयरपोर्ट भी बन गया है, दुनिया के लाखों लोग वहां जाते हैं। और साईं बाबा हैं भक्त किसके, सिद्ध पुरुष कौन होता है, जो शिव की आराधना करता है उसको सिद्ध कहते हैं। और शिव जी कहां रहते हैं, त्र्यंबकेश्वर में, और त्र्यंबकेश्वर में रोड भी अच्छी नहीं है। वर्तमान में जिसकी कृपा से सिद्ध बने उसके जगह का कोई डेवलपमेंट नहीं, और थोड़ा किसी ने चमत्कार दिखा दिया और सिटी में देख लो लाखों लाखों रुपए का सोना चढ़ावा आता है। गणपति में एक लाल बाग का गणपति है, करोड़ों रुपया, और गणपति में तो कई पंडाल ऐसे हैं इनको मांगने भी नहीं जाना पड़ता, लोग डाल जाते हैं। हम लोग तो जन्माष्टमी में घर घर जाते हैं मांगने के लिए भक्त लोग। ये कली काल का प्रभाव है। श्री प्रभुपाद जी कहते हैं 10,000 साल चले गए जन्म, ये जो भगवत धर्म है 10,000 साल तक ये कथा कीर्तन जो शुद्ध भक्ति का प्रचार है, उसके बाद जितने भी ये ढोंगी भोंगी ये योगी लोग हैं इन सब को भगवान बना दिया जाएगा। इसलिए भक्ति मार्ग श्रेष्ठ है। देवभूति कपिल प्रसंग में भगवान कपिल अपनी मां देवभूति को कई तरह का उपदेश देते हैं, योग मार्ग, दूसरे मार्ग। अंत में भगवान कहते हैं भगवत प्राप्ति के 2 मार्ग हैं, एक है ज्ञान मार्ग, एक है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग है बंदरिया के बच्चे की तरह, भक्ति मार्ग है बिल्ली के बच्चे की तरह। बंदर जब अपने बच्चे को ले जाता है तो अपने बच्चे को खुद नहीं पकड़ता, बंदर का बच्चा अपनी मां को पकड़ता, एक पेड़ से दूसरी पेड़ में छलांग लगाएगा, अगर बच्चे की पकड़ मजबूत है तो ठीक है, अगर थोड़ा भी ढीली पड़ गई धर्म से नीचे गिरेगा। इसे ज्ञान मार्ग जो योगियों का मार्ग है, खतरे का मार्ग, ध्यान मार्ग, आंख बंद करके पता नहीं कहां गुलाब जामुन खा रहा है आंख बंद कर। मैं राधागोविंद महाराज जी हैं हमारे गुरुदेव, उनका कोटेशन पढ़ रहा था। योगी लोग एकांत में ध्यान करते हैं, पता नहीं गुलाब जामुन का ध्यान करते हैं या रसगुल्ले का। लेकिन भक्त कीर्तन करता है और सामूहिक कीर्तन में, हरिनाम संकीर्तन में कभी उस चीज का दिमाग इधर उधर नहीं जाता। इससे कीर्तन भक्ति मार्ग है, एकांतिक ध्यान योग मार्ग होगा। बिल्ली के बच्चे की तरह है भक्ति मार्ग। बिल्ली जब अपने बच्चे को मुंह से ले जाती है चारों हाथ पांव छोड़ देता है, क्या क्या क्या, क्योंकि उसे विश्वास है मेरी माँ मुझे जहां भी ले जाएगी ठिकाने पर ले जाएगी। वैसे भगवान का भक्त जब भजन करता है सब भगवान को छोड़ देता है। और भगवान ने भी वचन दिया है, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मां शिष्याम। इसी कीर्तन का मार्ग भक्ति मार्ग को श्रेष्ठ बताया गया है। योगी लोगों को इनकी मुक्ति कब होगी, ये फिर जन्म लेंगे, कीर्तन करेंगे भजन करेंगे तब जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो सकते। और कई योगियों को तो आपने देखा उन्होंने बिजनेस शुरू कर दिया है, साबुन बेच रहे हैं। महान योगी प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्या लिखते हैं, दुर्वासा मुनि ब्रह्म लोक गए, वहां से तो क्या हवाई जहाज का टिकट बुक कराया, वो कहीं भी मन की गति से चलते हैं। कर्दम मुनि योगी हैं, देवूदी से विवाह किया, पूरा महल लेके चले गए, कोई बुकिंग नहीं कुछ नहीं। ये योगियों का लक्षण बताया है। लेकिन आजकल के जो योगी हैं, अब ज्यादा बोलना ठीक नहीं, मतलब सीधे ही बोल देता हूं कभी, क्योंकि हम बाहर प्रचार करते हैं ना बहुत परेशान हो जाते हैं, माहौल खराब करके रखा है बाहर। ऐसी ऐसी विद्या पढ़ाएंगे हमको। मेरा एक आज से 20-25 साल पुरानी बात है, मेरा रोड में एक योगी घूम रहा था, मेरे को बोला मैं रामेश्वरम जा रहा हूं 500 रुपए दो यात्रा के लिए। मैंने कहा मेरे पास कोई पैसा वगैरह नहीं है। बोला मैं आपको एक चमत्कार दिखाता हूं। हमने कहा दिखाओ। तो उसने वो मेरे हाथ में चावल का दाना रखा, कहा मुझसे मुट्ठी बंद करो। बाद में मुझसे बोला मुट्ठी खोलो, तो एक दाना उसने रखा था, चार दाने हुए बाद में ऐसा। तो मैंने कहा जब तुम एक दाने का चार दाना बना सकता है तो एक बोरी क्यों नहीं बना सकता, एक बोरी चावल निकाल के दिखाओ। तो उसने मुझे बाद में सच्ची सच्ची बात बताई, उसने कहा मेरे गुरु जी ने मेरे को इतना ही सिखा रखा है, एक दाने का चार दाना बना के मेरा गुजारा हो जाता है, तो मुझे हजार दाना बनाने की क्या जरूरत है। तो सब थोड़ा थोड़ा लेके काम चल रहा है अपना। कई लोग पानी के ऊपर, मैंने कथा सुनी है, प्रभुपाद जी नवद्वीप में कहीं गंगा जी के किनारे खड़े थे, तो योगी बोला प्रभुपाद को, आप इतना प्रचार करते हैं कुछ चमत्कार वगैरह जानते हो? तो प्रभुपाद जी ने कहा आप क्या चमत्कार जानते हो? उसने कहा मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं। तो प्रभुपाद जी के सामने पानी के ऊपर चलने लगा और बहुत दूर तक गया, फिर पानी से चल के वापस आ गया। तो योगी ने प्रभुपाद जी से कहा अब आप चमत्कार दिखाओ। तो प्रभुपाद जी ने एक नाव वाले को बुलाया और बैठे, उस पार गए इस पार आ गए, उसको 10 पैसा दिया, कहा हरे कृष्ण। प्रभुपाद जी ने योगी से कहा तुमने विद्या सीखने में कितने साल लगाए? उसने कहा मैं 25-30 साल से साधना कर रहा हूं, तो इसका फल यह है कि मैं पानी के ऊपर चल सकता हूं, तो मेरा थोड़ा दाम रखना मिल जाती है। तो प्रभुपाद जी ने कहा जो तुमने 25-30 साल साधना करके कमाया उसकी वैल्यू कितनी है? 10 पैसे के बराबर। मैंने जो अभी नाविक को 10 पैसा दिया उतना ही वैल्यू है ना उसका। अगर तुमने 25-30 साल कीर्तन किया होता, हरिनाम संकीर्तन किया होता, पानी के ऊपर तरना क्या, तू भव सागर से तर जाता। इसे कीर्तन मार्ग श्रेष्ठ बताया है। प्रहलाद महाराज के प्रसंग में भी जब हिरण्यकश्यपु का उद्धार करने के लिए भगवान नरसिंह प्रकट हुए खंभे से, योगियों ने कटाक्ष किया है भगवान पर, एक 5 साल के बच्चे के कहने पर खंभे से प्रकट हो गए। उसको ठीक ढंग से बोलना भी नहीं आता, छोतली बोली बोलता है और थोड़ा कीर्तन कर लेता है, ओम नमो भगवते वासुदेवाय वासुदेवाय, और उसने कहा खंभे में भगवान है, उधर से प्रकट हो गए। और हम जो लाखों सालों से आपको हृदय में बिठाना चाहते हैं, आप हमारे यहां तो कभी आते नहीं, खंभे में जल्दी चले गए। तब भगवान ने योगियों से कहा तुम लोगों को मुझ पर विश्वास नहीं, तुम जबरदस्ती मेरे को बैठाना चाहते हो, मैं जबरदस्ती आता हूं? तुमसे अच्छा तो 5 साल का बालक है, कीर्तन करता रहता है, पूरा भरोसा है मेरे को उस पर। क्योंकि उसने भरोसे तो बोला अपने पिता को, हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या खंभे में भगवान है? बोला है। जब भगवान कण कण में है तो खंभे में नहीं है, कितना दृढ़ विश्वास है, और तुम लोग जबरदस्ती मेरे को इधर बैठाना चाहते। इससे भगवान योगियों को पसंद नहीं करते। नारद जी का प्रसंग है ना, नाम बसामि वैकुंठे योगी नाम हृदयम न चा, यत्र गायन्ति मदभक्ता तत्र तिष्ठामि नारदा। मैं योगियों के हृदय में नहीं रहता नारद। नारद जी ने कहाँ रहते हैं आप, कुछ एड्रेस वगैरह है आपका? तब भगवान ने कहा मैं अपने लोग गोलोक वृंदावन वैकुंठ में भी नहीं रहता, मैं योगियों के हृदय में भी नहीं रहता, जहां मेरे भक्त सीधे साधे सरल भाव से मेरा कीर्तन करते हैं, हरे कृष्णा हरे राम राम राम, तो उन्हीं के बीच में बैठा रहता हूं। इसे भगवान की कथा कीर्तन जहां होता है वहां भगवान बैठे रहते हैं, भक्ति बैठी रहती है। भक्ति कहां बैठती है? जब भगवान का भक्त कथा सुनता है उसके हृदय में बैठती है। भागवत महात्म्य में कथा है ना, जब नारद जी ने कथा का आयोजन किया, सनत कुमारों ने कथा की हरिद्वार में, तो बाद में भक्ति देवी अपने दोनों बेटों को लेकर आती है ज्ञान बैरागी को, तो भक्ति पूछती है नारद जी को, क्योंकि वहां खचाखच भरा था सब बैठने के जगह में, तो भक्ति देवी ने नारद जी से पूछा मैं कहां बैठूं? तो नारद जी ने कहा जो कथा सुनने बैठे हैं इनके हृदय में जाके बैठ जाओ। इसे जो कथा का श्रवण करते हैं कीर्तन करते हैं उनके हृदय में भक्ति वास करती है और उनके मध्यस्थ बीच में भगवान निवास करते हैं, इसलिए भक्ति की महिमा गाई गई है। दुर्वासा मुनि अम्बरीश महाराज के चरित्र को उजागर करना चाहते हैं। आज अम्बरीश महाराज की गुण गाथा क्यों गाई जाती है? दुर्वासा मुनि की वजह से ना। उन्होंने रिस्क लिया है कि दुर्वासा मुनि भक्ति भक्ति मार्ग को मैं हाईलाइट करूं, उजागर करूं। इससे साधारण योगी नहीं है और भगवान की भक्ति को श्रेष्ठ बताया है। अकली काल में हरि नाम संकीर्तन चेतो दर्पण मार्जनम भव महादावाग्नि निर्वापणम श्रेय कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधु जीवनम
आनंदाम्बुदिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामिता साधनम सर्वात्मस्यपनम परम विजयते श्रीकृष्ण संकीर्तनम। चित्रूपी दर्पण का मार्जन करता है। दूसरे मार्ग ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, स्वाध्याय का मार्ग, यज्ञ का मार्ग, ये पुण्य है और पुण्य फल बड़ा खतरनाक होता है। भगवान का भक्त न पुण्य करता है न पाप, वो भगवान का भजन करता है, भगवान के धाम जाता है। गंगा जी में स्नान करने से पुण्य मिलता है, जमुना जी में स्नान करने से पुण्य नष्ट हो जाता है, क्योंकि पुण्य जब मिलेगा उसका भोग भी तो करना पड़ेगा। अब भोग कर लिया, खूब रसगुल्ले खाए, पेट भर गया, एसिडिटी हो गई, मरे नहीं मरे, ज्यादा भोग भी। इसलिए भगवान की भक्ति पुण्य को भी नष्ट कर देती है, उस पुण्य की जगह भगवत प्रेम प्रदान करती है, कृष्ण प्रेम प्रदान करती है, पुण्य से भी ऊपर है भगवान की, योगियों के मार्ग से ऊपर है, ज्ञानियों के मार्ग से ऊपर है। और जो महाप्रभु का सिद्धांत है हमारा, ये तो बड़े बड़े जो बड़े बड़े ऋषि मुनि हुए, सप्त ऋषि, जो बड़े बड़े योगी हुए, पतंजलि आदि, इन योगियों से भी कहीं ऊपर है। और श्रील प्रभुपाद जी का जो मूवमेंट है, ये तो त्रिभुवन में विचित्र मूवमेंट है। प्रभुपाद जी कहते हैं, एक योगी हिमालय में योग में बैठा हुआ है, ध्यान कर रहा है, और एक हरे कृष्ण मंदिर में एक माला जप करता है, वो हजार, उस योगी का हजार सालों का योग और मंदिर में एक माला जप करने के बराबर है। इतनी महिमा बताइए। हम जो हरे कृष्ण महामंत्र जप करते हैं, ठाकुर जी का दर्शन करते हैं, सामूहिक कीर्तन करते हैं, ये योगियों के लिए भी दुर्लभ है। ये भक्ति की सरलता है कि वो अपनी महत्ता को बताने से ज्यादा बड़ बोल बोलेगा नहीं, क्योंकि सरल हृदय होता है। और जो योगी हो रहे हैं, थोड़ा सा कुछ कर लिया चमत्कार। अभी मैं आजकल इस पर गूगल में देखता हूं, गॉट ए टैलेंट, अमेरिका टैलेंट, ब्रिटिश टैलेंट, अरे उसमें ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाते हैं। हम समझते थे पहले बड़े बड़े योगी लोग चमत्कार दिखाते होंगे, वो तो उससे भी ज्यादा धमाल कर देते हैं वहां। आप देखना, अगर गॉट ए टैलेंट टाइप करना, स्टेज से गायब हो जाते हैं वो, तुरंत स्क्रीन पर आ जाएंगे, तुरंत जिधर उनके जज लोग बैठते हैं उनके टेबल के अंदर आ जाते हैं। ये सब कला है, कोई योग वगैरह नहीं है। योग क्या है? योग का भी फल क्या है? भगवत प्राप्ति। अब आकर किससे भगवान मिलते हैं? करोड़ों रुपया सर, बोलना नहीं चाहिए। और क्यों नहीं बोलना चाहिए? हम नहीं बोलेंगे तो कोई और बोलेगा? भक्तों को ही बोलना चाहिए, तभी तो प्रचार होगा। प्रभुपाद जी का आशीर्वाद है, उनकी वाणी हमारे पास है, हमको रिपीट करने में क्या जाता है? हमारे पास तो कुछ है नहीं, आचार्यों ने हमको संपत्ति दी है, वाणी दी है, उनकी बात को रिपीट करना है। भगवद गीता यथारूप, इसे बोलना है। कई दफे हम डरते हैं क्या होगा, सच में बताइए क्या है? ऊपर नीचे, एक बार तो एक आदमी इतना दिन भर योग करता था, मैं जल्दी जवान हो जाऊं करके, और कोई म्यूनिसिपल कमिश्नर था बॉम्बे का, दिन भर हुआ है कि उसकी आंतड़ियां ऊपर को आ गई,
60 साल में रिटायर हो गया, 16 साल का दिखना चाहता है, तो नहीं योगा में बोला होगा, जवान रहते हैं उसमें, जाओ हॉस्पिटल। कीर्तन नहीं करेंगे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। चैतन्य भागवत में लिखा है, एक नाम इतने पापों का नाश कर सकता है जितने पाप आदमी फैक्ट्री खोल के बना भी नहीं सकता, इतने पाप का सेट। नाम नहीं जपते, योग करेंगे, ध्यान करेंगे, फलाना, भगवान के नाम से रोग भी दूर होता है। अगर आपको कोई बीमारी है, ऐसा नहीं कि रोग योग में या दूसरी विधियों में उसका इलाज है, इसमें भी इलाज है। मुकुंद माला सूत्र में श्लोक है, किंग कुलशेखर से कहते हैं, ये क्या दवाई दवाई लगा रखी है। उस श्लोक मेरे याद रहता भी याद नहीं आ रहा, कुछ देर में आ जाकर बोल दूंगा। इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवसम सत्संधि जर्जरम किम औषधम पिछसी मूढ़ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पियो पियो। मेरे कमर दर्द हो गया, मेरी खोपड़ी फट रही है, मेरा सर फट रहा है, तो जब कर इदम शरीरम परिणाम पेशलम पतत्यवसम सत्संधि जर्जरम। कुबड़ा हो गया है फिर भी सीधा, क्या दवाई पूछता है। किम औषधम पिछजी मूड दुर्मते, अरे मंदमती मूर्ख क्या दवाई विटामिन खाते रहते। निरामयम कृष्ण रसायनम पियो, भगवान कृष्ण के नाम का जप कर, कृष्ण नाम। तुंडे तांडवनी रतिं वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण क्रोल कलंबिनी घटयते कर्णाम बुद्धि विस्प्रीहाम तेज प्रांगण संगिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणांकृतिं यो जाने जनिता क्रियदि भर मृते कृष्णे तीवणद्वयी। ये दो अक्षर का ढाई अक्षर का जो नाम है, ये नाम इतना सुंदर है, इसके लिए दो कान की नहीं हजारों कानों की जरूरत, सुनने के लिए, बोलने के लिए हजारों मुख की जरूरत। गोपियां ब्रह्मा जी को कटाक्ष करती हैं, विधाता बन गए, ढांचा बनाना नहीं आता, खाली एक मुंह दो कान चिपका के भेज दिया। भगवान का गुणगान सुनने के लिए, कीर्तन सुनने के लिए, उनकी महिमा सुनने के लिए लाखों कानों की जरूरत पड़ती है। ब्रह्मा जी को सलाह देती हैं, अगली बार से ढांचा बनाओ, स्वस्थ मत तो बनाए करो, दो कान चिपका के दो आंख लगा के फिट करके बैठ दे। दो अक्षर का नाम इतना सुंदर है भगवान का, इसे भगवान का नाम का आश्रय, और सब भगवान के नाम में मिलेगा। श्री प्रभुपाद जी से कई पत्रकारों ने पूछा है कि आपकी सफलता जो आप प्रचार कर रहे हैं विश्व में, इसका रहस्य क्या है। प्रभुपाद जी कहते हैं, कीर्तन, जो हम कीर्तन करते, कीर्तन करने से सब आ जाता है। देखिए, हमारे पिताजी अमेरिका में रहते हैं, बेटा अमेरिका में रहता है। जैसे कोई हमको पूछेगा, कहाँ है आपके पिताजी अभी, अमेरिका में, तुरंत उनका चेहरा सामने आता है कि नहीं आता। या बच्चे के बारे में पूछेगा, जैसे नाम लिया, तुरंत उसका चेहरा सामने आता है। वैसे जब हम भगवान का नाम जप करते हैं, तुरंत भगवान का विग्रह सामने से आ जाता है। इसलिए हमेशा भगवान का नाम कीर्तन, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्री भक्ति विनोद ठाकुर हमारी परंपरा के आचार्य उनको सप्तम गोस्वामी भी कहा जाता है। उड़ीसा में डिस्ट्रिक्ट जज थे भक्ति विनोद ठाकुर। फिर कथा आती है कि उसमें एक योगी बड़े बड़े बाल रख के अपने को कृष्ण का अवतार करता और सब स्त्रियां जाकर के जो शिक्षित वर्ग है जाके उनकी पूरा भगवान मानते हैं। और भक्त विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट जज थे और भगवान के भक्त हैं। भक्त विनोद ठाकुर ब्रिटिश टाइम के डिस्ट्रिक्ट जज नहीं थे, देवलोक के भी जज। चैतन्य चरितामृत आदि ग्रंथों में ऐसी प्रसंग आता है। भगवत गीता के 9वें अध्याय में एक श्लोक है, अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधु रव मंतव्यम सम्यक व्यवस्थित ही सौ। फिर आगे भगवान कहते हैं, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा कौन ते प्रति जाने नमे भक्त्या प्रणश्यति। इन दो श्लोकों के ऊपर देवलोक में विवाद छिड़ गया, सब देवता भिड़ गए, कैसे हो सकता है। अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग और तुरंत ही साधु रव मंतव्यम, उसको साधु मानना चाहिए। मतलब एक व्यभिचारी पापाचारी जैसे थोड़ा महामंत्र जप करने लगे, भगवान का नाम का आश्रय ले, उसको साधु मानना चाहिए। देवताओं में भी बात चढ़ाए और कोई भी निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाया। तो अंत में निष्कर्ष लिया गया कि नवद्वीप में एक डिस्ट्रिक्ट जज रहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उनको बुला के लाओ। तब देवता लोग भक्त विनोद ठाकुर की आत्मा को पकड़ के ले गए और देवलोक में जाके डिसीजन दिया और देवताओं को कन्विंस किया कि भगवान ने जो गीता में कहा है इस बात सही है, और देवता लोगों ने बात को स्वीकार किया। ऐसे भक्ति विनोद ठाकुर ने उस योगी को बंद करवा दिया, अरेस्ट किया उसको कि तुम अपने आप को भगवान मानता है, पूजा करवाते हो अपने। और बाद में उनके उस योगी को जब अरेस्ट किया तो उसकी योग के प्रभाव से भक्ति विनोद ठाकुर का पूरा परिवार ज्वर से पीड़ित हो गया। भक्ति विनोद ठाकुर की पत्नी ने कहा, क्यों झंझट में पड़ते हो, छोड़ दो, सब बच्चे देखो बिस्तर पर लटक गए। भक्ति विनोद ठाकुर ने कहा, तुम सब मर जाओ लेकिन मैं ये मानने को तैयार नहीं कि योगी भगवान है। ऐसे आचार्यों की परंपरा में हम लोग भजन करते हैं। भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी, सारे आचार्यों का समाहित भाव है भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद। बाहर से जितने कड़क हैं अंदर से सॉफ्ट। और हमारी आचार्य परंपरा कैसी है, रूप गोस्वामी पाद भगवान के लिए रोते नहीं जलते हैं। रोता कौन है, जिसके आंसू निकलते हैं। आंसू किसके निकलेंगे, जिसका पानी होगा ना। लेकिन भगवान का भक्त भक्ति में राधा कृष्ण के विरह में जलता है, उसके आंसू भी सूख जाते हैं, जलता है। इसलिए भागवत की शुरुआत ही ज शब्द से हुई है, जन्मांध से यथा नवयाति तरत क्या थे सभी स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुयंती यद सूर्य। गोपी गीत की शुरुआत भी जो से, जयति तेदी कम जन्म ना ब्रज। ये जलते हुए हृदय को, और किससे जल रहे हैं, कामनाओं से वासनाओं से जीव का हृदय जल रहा है। और इस जलते हुए हृदय को तप हृदय को शांत कौन कर सकता है, सिर्फ हरि नाम भगवान की भक्ति इसको शांत कर सकती है, और दूसरा उपाय नहीं। इसे हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलौ नास्ते 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 गति रन्यथा। मैं घड़ी की तरफ भी देख रहा हूँ और महाराज की तरफ भी देख रहा हूँ, क्योंकि महाराज ने पक्का नियम बना रखा है 8:45 क्लास। तो मैं यहाँ पर कथा को विराम देता हूँ। किसी का कोई प्रश्न या कमेंट्स है तो पूछ। हरे कृष्ण। कोई प्रश्न नहीं है? हाँ पूछ पूछिए। बंसी बदन वो भाई को बोलिए।
हरे कृष्णा। आपने बोला ना प्रभु जी की भगवान का एक नाम ही मतलब जो हमारा सारा पाप नष्ट कर देता है।
और तुम पहले अपनी आवाज तो खोलो, तुम्हारी आवाज नहीं आ रही।
हरे कृष्णा। आपने बोला ना प्रभु जी की भगवान का एक नाम ही जो है हमारा सारा पाप नष्ट कर देता है ना? तो मतलब वो मतलब उसका गुणात्मक कुछ ये होता है या फिर तो हम तो हमेशा हमें जो बताया जाता है कि रोज 16 माला जपिए मतलब
भगवान का एक नाम सब पापों को नष्ट कर देता है। कब? जब पाप करना बंद कर दोगे तब। अब दुकान में से रोज उधार लिए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि अभी भी देना बाकी। अब तुम देते जाएगा उधार भी लेते रहेगा तो पाप कब बंद होगा? जिस दिन हम पाप करना बंद कर देंगे, हरि नाम का आश्रय लेंगे, तो उससे पहले जितने भी हमने पाप किए नष्ट हो जाएंगे। हरि नाम भी लेंगे, पाप भी करेंगे तो 1000 गुना और बढ़ जाएंगे और चक्करों पड़ जाएंगे। इससे जिस दिन आज हमने संकल्प लिया हरि नाम भगवान की कथा से पाप कट जाते हैं, आज के बाद पाप नहीं करेंगे। फिर देखो एक एक नाम से, और नाम जब करते वक्त एक एक पाप को याद करो। ओहो मैंने फलाना कितना बड़ा अपराध हो गया। कथा में चिंतन करिए, अरे जो कथाकार बता रहे हैं वो ये तो बोल रहे हैं पाप है, मैं तो दिन भर यही करता हूँ और अब नहीं करूंगा भैया बाप रे। तो जैसे आप कथा में चिंतन करेंगे, हरि नाम जब करेंगे तो तुरंत पाप, क्योंकि भगवान का नाम जब करते हैं तो भगवान साथ में रहते हैं। वहां पर भगवान का एक नाम चिंतामणि भी तो है, भगवान पीछे से खड़े रहते हैं कि जो मेरा नाम जप रहा है ये कुछ मांगे तो मैं तुरंत दूं। तो जैसे आप चिंतन करेंगे, बाप रे मैंने इतना बड़ा पाप किया अब नहीं करूंगा, भगवान पीछे से बोलेंगे अब नहीं करेगा माफ किया जाओ। अब भगवान पीछे से खड़े हैं, मुंह से बोले जा रहा है बड़े पाप किया, चलो कल और कर लेते हैं, फिर अगले संडे से फिर देखेंगे। जैसे चर्चों में लोग जाते हैं क्रिश्चियन लोग, संडे को गए तो मंडे से सैटरडे तक जितना किया माफ कर दो, फिर कल से फ्रेश वाला पाप शुरू कर दो। तो ऐसे पाप भगवान माफ नहीं करते। हाँ बंसीवाला वो बोलिए। मुझे माफ करना, सब बड़े बड़े वैष्णव हमारे बैठे हैं तो ये मैं अनाधिकार चेष्टा है महाराज के सामने आसन। बजरी प्रभु है, मुकुंद माधव प्रभु बड़े बड़े लोग, अब चूंकि आसन पर बैठा हूं थोड़ा तो होशियारी दिखानी पड़ेगी ना, नहीं तो आप लोग बोलोगे खाली बैठ गया तो कुछ आता नहीं है। तो थोड़ा होशियारी में एक आध घंटा कर लेता हूं और बाद 10 बजे बाद देखेंगे मेरे बराबर मूर्ख आपको कोई मिलेगा नहीं। हाँ बोलिए बोलिए। हाँ माइक दो।
हरे कृष्ण। प्रभु जी आपने अच्छा से विस्तारित व्याख्या किया, लेकिन भागवतम की शुरुआत में बताया जाता है भागवतम जो है एक ऐसे ग्रंथ है जिसका श्रवण मात्र से भगवान की भक्ति निरामय हृदय में प्रकट होगा। यहां पर अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की जो कथा चल रही है आप उसके बीच में प्रस्तुत किया प्रहलाद महाराज की कथा। प्रहलाद महाराज की कथा जो है ये विश्वास का प्रतीक है और अम्बरीश महाराज और दुर्वासा ऋषि की कथा जो है प्रभाव और स्वभाव की प्रतीक है। भक्त को सीखनी चाहिए प्रभाव को छिपा करके स्वभाव को प्रकट करनी चाहिए, इससे भक्तों में प्रेम भाव बढ़ेगा और एक दूसरे के प्रति डर भाव भी नहीं रहेगा। लेकिन हम सभी तो वैष्णव कहते हैं लेकिन अपना प्रभाव को प्रकट करते हैं, लेकिन स्वभाव हमारा कभी दिखता नहीं है। इसीलिए मेरा सुझाव तो नहीं है, मेरी छोटी बुद्धि है, तो भागवतम ये जो कथा है सिर्फ 8 से 9 बजे कम दर नहीं, कभी कभी भक्तों के बीच में जो श्रद्धा रखते हैं विश्वास रखते हैं इनके बीच में कथा का चर्चा भी होना चाहिए। इससे हमें एक ऐसे रस का प्राप्ति होगी जिसको हम कभी सोचे भी नहीं है, क्योंकि हम लेक्चर के रूप में एक प्रोफेशनल इसको कहते हैं, वास्तविक तो है प्रभाव जो है स्वभाव से बढ़कर है। इसलिए हम सभी स्वभाव को ही अपने जीवन में उतारना चाहिए। हरे कृष्ण
हरे कृष्ण। इंद्र का लड़का था एक, कौवा बन के गया था, क्या नाम था उसका? जयंत। हाँ, चित्रकूट में लीला करते थे भगवान, रामायण का प्रसंग है। और एक दिन उसने देखा कि भगवान सीता का बाल बना रहे हैं और फूल लगा रहे थे सीता जी के। तो जयंत ने कहा कि भगवान है, पूरी दुनिया इनको भगवान मानती है, पूजनी मानती है, और ये तो अपनी पत्नी के श्रृंगार में लगे हुए हैं। कभी कभी प्रभाव के बाद स्वभाव आता है। जब भगवान का डंडा पड़ता है ना, दुराचार मुनि ने अम्बरीश महाराज की प्रशंसा कब की है? जब झुलस गया एक तरफ, एक साइड पूरा काली पड़ गई ना, तब आए ना शरण में। तो कभी कभी प्रभाव के बाद स्वभाव, और जब स्वभाव आ गया तो फिर भगवान निकट है। तो ये जयंत ने चोंच मारी सीता जी के पांव में, और सीता जी ने कहा देखो राम जी से मेरा पांव में चोंच मार गया। और भगवान ने बिना फरका पान तो विभिन्न लोकों में गया। ऐसी हालत हो गई, एक बार रोड पर भीख मांग रहा था इंद्र का लड़का। भगवान के प्रभाव को जानने का फल क्या है, इंद्र के यानी देवता को भी रोड पर भीख मांगनी पड़ती है। और नारद जी कीर्तन करते हुए जा रहे थे, नारद जी उसको पहचानते थे, अरे तुम इंद्र का लड़का, इधर ये तुम्हारी हालत खराब क्यों है? तो उसने कहा हालत खराब इसलिए है क्योंकि मैं भगवान का प्रभाव देखने गया था, इसलिए हालत हो। तो जयंत ने नारद जी से कहा कुछ उपाय है कि मैं अपने असली जो मेरी हकीकत है उसमें आ जाऊं? नारद जी ने कहा जिनके प्रति अपराध किया है उनके शरण में दोबारा जाऊं। तो कहा किस मुख से जाऊं? नारद जी युक्ति बताते हैं, भक्त युक्ति बताता है। तो जयंत ने कहा मैं किस मुख से जाऊं, मैंने इतना बड़ा अपराध किया है। नारद जी ने कहा मैं जैसा कहता हूं ऐसा करना, तो चुपचाप भगवान के शरण में चला जा और वो पहले पूछेंगे फिर आ गया, पहले क्यों आया था और अब क्यों आया? तो धीमे से कहना है प्रभु मैं पहले आपकी पत्नी की पांव में चोंच मारने नहीं आया था, मैं आपका प्रभाव देखने आया था। और जब भगवान पूछेंगे अब काहे को आया, तो धीरे से कहना इस बार आपका स्वभाव देखने के लिए आया हूं। और जैसे ही तू कहेगा तो पुरानी हालत में आ जाएगा। तो जीव भी हर कोई अपना प्रभाव दिखाना चाहता है, प्रभाव तो है नहीं, कितने दिन दिखाएंगे? कई कथाएं हैं, अभी टाइम जाएगा। अरे एक शेर का बच्चा है, एक कुत्ता का बच्चा है, और दोनों जंगल में प्रैक्टिस कर रहे थे शिकार करने की। तो कुत्ते का बच्चा कितना छलांग लगा सकता है, और शेर तो जन्मजात शिकारी है। इसलिए स्वभाव में जो भक्त स्थित है वो तो भगवान की देन है ना, प्रभाव भगवान की देन नहीं है, प्रभाव हम अपना दिखाते हैं। तो प्रभाव ज्यादा समय रहता नहीं, और जो प्रभाव नहीं रहता और वही प्रभाव हमको निजी स्वभाव में ले आता है, ये भी भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। यही दुर्वासा मुनि और अम्बरीश महाराज के प्रसंग से शिक्षा मिलती है। दुर्वासा मुनि कोई अपराध नहीं कर रहे अम्बरीश महाराज के प्रति, अभिनय कर रहे हैं, हम लोगों को शिक्षा दे रहे हैं। दुर्वासा मुनि कभी ऐसा नहीं कर सकते, द्रौपदी का कभी चीरहरण नहीं हो सकता। द्रौपदी का कोई चीरहरण कर सकता है? भगवान जिनके आश्रय हो, अभिनय कर रही है। गीता का जो श्लोक है, कौन सा श्लोक है? चतुर्विधा भजन्ते यो मा जने सुकृत अर्जुन आर्त जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी च भर्तत सब। उसमें जो आर्त शब्द है, आर्त शब्द की हीरोइन कौन है? द्रौपदी। अभिनय कर रही हो। फिल्म स्टारों को देखा, भीख मांगने का रोल करेंगे 1 करोड़ रुपए लेते हैं। इसलिए भगवान के जितने भी चरित्र हैं, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, कंस, ये सब भगवान के पार्षद हैं। लोग अभिनय करने के लिए मंच पर आते हैं। कोई विलेन बनता है, नट और नटकी का उदाहरण है ना, कोई हीरो बनता है, कोई साइड हीरो बनता है। ये सब नाटक किससे दिखाए जाते हैं? कि समाज में लोग कैसे शिक्षा प्राप्त करें, अच्छे मार्ग पाए। तो ये भगवान का बहुत बड़ा मंच है। हम एक पिक्चर देखते हैं तो एक छोटा सा स्टेज है और भगवान का स्टेज बड़ा है। अगर हम इससे कुछ भी हासिल कर लेंगे तो जन्म जन्मांतर हमारे सुधर जाएंगे, जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएंगे, आवागमन के चक्र से मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से इस तरह की कथाएं की जाती है। भागवत में कई उपाख्यान है। पुरंजन का उपाख्यान, ये पुरंजन नाम का कोई राजा हुआ नहीं था, ये नारद जी दृष्टांत बताते हैं प्राचीन वरी को। तो कई दृष्टांत ऐसे हैं जो सुनाए। जय दुर्वासा मुनि है, वो क्या अम्बरीश महाराज की महत्ता नहीं समझते? शंकर जी के अवतार हैं और शंकर जी भगवान का नित्य कीर्तन करते हैं। लेकिन हम लोगों को अपने स्वभाव में लाने के लिए, हम अपने जीव अपने स्वभाव से दूर हो गया है, दूसरी जगह चला गया है, अपनी निजी स्थिति में आ जाए, अपना परिचय मान ले। इसलिए दुर्वासा मुनि, अम्बरीश महाराज, जो दूसरे दूसरे राष्ट्र लोग हैं, भरत महाराज, राजा रघुगुण, रघुगुण को जानता नहीं, वही रघुगुण बाद में हिरण बनता है, जो उनकी जो राजा को शिक्षा लेने गए थे। ये सब भगवान के पात्र हैं। अभिनय किस लिए कर रहे हैं? हम लोगों का कल्याण करने के लिए। इसलिए हमें इन शिक्षाओं को अगर थोड़ा भी जहन में उतारेंगे, चिंतन करेंगे। अब मैं खुद भाषण दे रहा हूं, लेकिन मैं जितना बोल रहा हूं मैं 1% भी नहीं करता हूं। अरे चलो, जितना देर बैठा हूं उतना देर तो हुआ, कल्याण जरूर होगा। मोती कैसे बनता है? पानी का मोती बनता है। पानी समुद्र के अंदर एक सीपी होती है शंख के आकार की। तो पानी की कोई भाग्यशाली बूंद उस शंख के छेद के अंदर चली जाती है, जैसे अंदर जाती है मोती बन जाती है। तो जरूरी नहीं कि हम 24 घंटा भगवान का चिंतन करें, यही संभव भी नहीं आज के जीव के लिए। अरे लेकिन 24 घंटों में या 1 महीने में, साल में कभी ना कभी एक क्षण ऐसा, ऐसी झलक आएगी कि यार भगवान सब कुछ है, मैं बेकार हूं। बस इतना भी झलक आ जाएगी, कल्याण हो जाएगा। थोड़ा सब कुछ आना चाहिए। पैरालाइज कैसे होता है? झटका आता है ना, तो कभी ना कभी तो आता है, अरे मैं कुछ नहीं हूं, भगवान सब कुछ है, मेरा कोई प्रभाव नहीं है। लेकिन भगवान का स्वभाव सब कुछ है। थोड़ा भी चिंतन आ जाएगा, धीरे 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 धीरे। फिर इसमें हमारे गोस्वामी, षट गोस्वामी ने, आचार्य लोगों ने टीकाएं लिखी हैं। अब हमने तो कह दिया भगवान का नाम जप करो, उद्धार हो जाएगा। अब इसमें भी कई कैटेगरीज हैं, नामापराध, नामाभास, प्रशुद्ध नाम। भक्ति भी कई तरह की है। अब भक्ति सच्ची भक्ति कौन सी भक्ति है? आरोप सिद्धा भक्ति, संग सिद्धा भक्ति, स्वरूप सिद्धा भक्ति। अभी देवभूति कपिल प्रसंग में जाएंगे भक्ति के भी तीन स्वरूप बताए हैं, विश्वास, संबंध और समर्पण। धीरे धीरे इसमें घुसेंगे, प्रवेश करेंगे, तो फिर इन चीजों के प्रति लालसा बढ़ती जाती, तो धीरे धीरे एक दफे प्रवेश हो जाएगा। ऐसा नहीं कि एक माला जप करने से तुरंत वैकुंठ लोग चले जाएंगे, ऐसा जरूरी नहीं कि हम हरे कृष्ण मंत्र ही जपते हों। हरे कृष्णा के जो कई लोग बोलते हैं, हरे कितना कितना हरे, हरे माला फेर रहे हैं पैसे के चक्कर में, इसकी भी चर्चा भगवान करते हैं। अर्थार्थी लोग भी भगवान का भजन करते हैं। मनुष्याणां सहस्रेषु यतति कश्चित् सिद्धये यततामपि सिद्धानां कश्चित् मा वेति तत्त्वतः। कोई एक हमको जान पाता है, बहुनां जन्म नामन्ते ज्ञानवान प्रबद्धते वासुदेव सरमिति स महात्मा सुदुर्लभ। श्री प्रभुपाद जी भी कहते हैं इस इस्कॉन के विश्व भर में जितना भी संस्था है, जितने लोग इसमें साधन भजन कर रहे हैं, अगर इतने में से एक भी शुद्ध भक्त बन गया, वो एक शुद्ध भक्त बाकी सब भक्तों का कल्याण कर देगा। प्रभुपाद जी कहते देखो, एक प्रभुपाद ने इतना बड़ा मूवमेंट खड़ा किया और वो जो स्टेज हमारे लिए बना के गए, अगर इसमें भी प्रभुपाद की कृपा किसी के ऊपर हो जाए तो उस एक के माध्यम से क्या हमारा कल्याण नहीं होगा? इसी आशा के मारे हम भी यहाँ पड़े हुए हैं। हरे और कोई? अच्छा, बहुत धन्यवाद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, ऊपर जरूर बैठा हूँ, आपका पांव और मेरा सर प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे राम। ग्रंथ राज श्रीमद भागवत महापुराण की, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की।